ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जानकारी दी है और वे जल्द ही सभी एजेंसियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। श्री शाह ने घटना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गृहमंत्री ने कहा कि इस कायराना हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री शाह ने कहा कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने श्री शाह से बातचीत में उन्हें सभी उचित कदम उठाने को कहा है और उन्हें घटनास्थल का दौरा करने का भी निर्देश दिया है। आज दोपहर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया। ये हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों का नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने का देश का संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस घटना में खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दाह पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उम्मीद जताई है कि उनकी इस यात्रा से भारत और सऊदी अरब के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर श्री मोदी की सऊदी अरब की यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने कहा है कि सदी का भविष्य भारत और अमरीका के बीच साझा व्यापारिक संबंधों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर व्यापार वार्ता की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। जयपुर में एक बिजनेस समिट में श्री वेन्स ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना भले ही हो रही हो लेकिन उन्होंने संतुलित व्यापार का माहौल बनाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत अमरीका का सबसे करीबी और विश्वसनीय साझेदार है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और संपत्ति का दुरुपयोग रोकना है। वक्फ सुधार और जन जागरूकता अभियान के तहत मुंबई में आज संवाददाता सम्मेलन में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में जमीन के एक एक इंच का उचित उपयोग होना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि अब से वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी गांव को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में एक सड़क दुर्घटना में 16 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि एक वैन में गेहूं की कटाई का काम पूरा करने के बाद लोग घर लौट रहे थे। राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को रोम में होगा। दुनिया के कई नेता और गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। पोप के ताबूत को कल जनता के दर्शन के लिए वेटिकन शहर के सेंट पीटर बेसिलिका ले जाया जाएगा। पोप फ्रांसिस का निधन कल 88 वर्ष की आयु में वेटिकन शहर में उनके निवास पर हो गया था। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं शामिल हैं। शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से कुछ ही देर में शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दिल्ली की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है जबकि लखनऊ 5वें नंबर पर है। प्रतियोगिता में कल हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।